रिशानी का सुसाइड केस रीओपन होने के बाद आज कोर्ट की पहली हियरिंग थी। जज साहब का अभी कोर्ट में आना बाकी था, जबकि बाकी लोग अपनी अपनी जगह पहुंच चुके थे। मोक्ष, ईशानी और विकास खन्ना एक तरफ बैठे हुए थे। इस केस को मोक्ष रिप्रेजेंट करने जा रहा था, क्योंकि ईशानी की LLB अभी पूरी नहीं हुई थी। इन सब के बीच आलिया की एंट्री हुई, जो माया के साथ आई थी। वो दोनों अपने लॉयर मिस कावेरी दत्ता के पास जाकर बैठ गए। आलिया और माया ईशानी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उनके पीछे पीछे रुद्री भी आई। रुद्री को अकेले वहां देखकर ईशानी को थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि रुद्राक्ष नहीं आया होगा। ईशानी रुद्राक्ष के बारे में रुद्री को पूछती उससे पहले उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां से विक्रांत और दिव्या के पीछे रुद्राक्ष आ रहा था। उन्हें देखते ही ईशानी का मूड अपसेट हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। फिर से अपने दुश्मनों के बीच में जाकर बैठ गया। मोक्ष ने ईशानी का उतरा हुआ चेहरा देखा। ईशानी की नज़र दरवाजे की तरफ थी। मोक्ष ने उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए दूसरी तरफ देखा तो रुद्राक्ष विक्रांत और दिव्या के साथ दिखा। अब मोक्ष को समझ आ गया था कि ईशानी क्यों परेशान है। मोक्ष ने ईशानी के हाथ को सहलाकर कहा, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी, हमें तो हो ही गई है। जब भी हमारी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है या हमें इनकी ज़रूरत होती है, तब ये हमारे पास नहीं उन्हीं के साथ रहते हैं। हाँ, अब यही लग रहा है कि मैंने बेकार में ही इनसे उम्मीद लगा ली। खैर जाने दो, हम अपना काम करेंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना हो, ईशानी ने खुद को सख्त करके कहा। रुद्री ईशानी और मोक्ष की तरफ बैठी हुई थी। दीपिका भी आज कोर्ट में आई थी। ईशानी नहीं जानती थी, लेकिन उन्हें रुद्राक्ष नहीं बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष खुराना फैमिली के पास बैठा था। उसने एक नज़र ईशानी के चेहरे की तरफ देखा, जो काफ़ी परेशान लग रही थी। इन सब के बीच लगभग 5 मिनट के अंदर जज साहब कोर्ट में पहुंचे। उनके आते ही सब खड़े हो गए। केस की पूरी डिटेल जज साहब की टेबल पर रखी हुई थी। उन्होंने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने की तरफ देखकर सधे हुए लहजे में कहा, रिशानी शर्मा का केस फिर से ओपन किया गया है, जबकि पिछली बार कोई सबूत नहीं मिले थे। उम्मीद है इस बार इस केस को पूरे सबूत के साथ आगे लाया गया है, वरना कोर्ट अपना वक्त बर्बाद करने के लिए फाइन लगाएगा। मोक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और केस को पहले रिप्रेजेंट करते हुए बोला, इस बार मैं इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, मोक्ष ने शुरुआत में कहा। फिर वो कुछ पल रुककर आगे बोला, सर इस मामले की शुरुआत 22 अगस्त 2020 को हुई थी, जब एक अवार्ड नाइट के दौरान एक्ट्रेस रिशानी शर्मा का एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली थी। मोक्ष के कहते ही दूसरी लॉयर कावेरी दत्ता ने इंटरप्ट करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता जज साहब ये लोग कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए बार बार आ क्यों जाते हैं, जब इन्हें खुद पता है कि रिशानी शर्मा ने सुसाइड की थी और उसकी वजह भी सबको पता है। पहले तो उसने खुद की पब्लिसिटी करवाने के लिए एक लड़के के साथ अपना प्राइवेट वीडियो शूट करवाया और फिर उसे वायरल कर दिया। जब उसे बदनामी सहन नहीं हुई तो उसने सुसाइड कर ली। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ऐसा कदम नहीं उठाता है, उसके लिए उसे मजबूर किया जाता है। मेरे पास सबूत है कि रिशानी शर्मा ने वो वीडियो खुद से वायरल नहीं करवाया था और ना ही किसी से शूट करवाया था। इसमें किसी रिपोर्टर का हाथ था और उसी ने ये रिशानी के परमिशन के बिना किया था, मोक्ष ने सख्त शब्दों में कहा। इस बार केस को वो रिप्रेजेंट कर रहा था और मोक्ष वाकई एक अच्छा लॉयर था। उसने फिर कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस वक्त रिपोर्टर मानिक सहगल को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। ये वही रिपोर्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले इस न्यूज़ को कवर किया था। मानिक सहगल को कोर्ट में बुलाने के लिए पहले ही फरमान भेज दिया गया था और वो कोर्ट में मौजूद था। आलिया ने उसकी तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में सब संभालने का कहा और अपने कदम विटनेस बॉक्स की तरफ बढ़ा दिए थे। आते ही उसने सबसे पहले सब सच बोलने के लिए गीता की कसम खाई और फिर मोक्ष की तरफ देखकर कहा, पूछिए, आपको मुझसे जो भी सवाल पूछना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो न्यूज़ मैंने कवर नहीं की थी, मैंने जस्ट वो न्यूज़ रीड की थी। अच्छा, आपको कोई भी न्यूज़ रीड करने से पहले सपने तो आते नहीं हैं मिस्टर सहगल, किसी न किसी ने तो आप तक वो वीडियो फुटेज और बाकी की न्यूज़ पहुँचाई ही होगी। क्या मैं उस रिपोर्टर का नाम जान सकता हूँ? कोई बात नहीं, हम उसे भी यहाँ गवाही देने के लिए बुला लेंगे, मोक्ष ने पलटवार करते हुए कहा, जिस पर मानिक सहगल चुप हो गया। उसी ने वो न्यूज़ कवर की थी। मुझे उसका नाम याद नहीं है, मानिक सहगल थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन मुझे सब पता है मिस्टर सहगल, मोक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फिर वो जज की तरफ देखकर बोला, ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब, उस रात इन्होंने ही रिशानी का वीडियो शूट किया था। मुझे नहीं पता कि पहले ये सबूत आप तक क्यों नहीं पहुँचाए गए, लेकिन अवार्ड के बाद पार्टी से जब रिशानी निकली थी तब वो रेस्ट के लिए आलिया खुराना की वैनिटी में गई थी। वैनिटी के आसपास कोई नहीं था, लेकिन वहां की CCTV फुटेज में वॉचमैन ने एक आदमी को भगाया था और ये वही थे। मैं कंफर्मेशन के लिए वॉचमैन को भी यहां पर गवाही के लिए बुला सकता हूं, लेकिन CCTV फुटेज में इनका चेहरा थोड़ा कवर हो गया था। हमारे लिए इतने सबूत काफी होंगे। अपना पॉइंट प्रूव करने के बाद मोक्ष ने CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग जज साहब को दे दी थी। रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्ले की गई जिसमें मानक सहगल का चेहरा दिखाई दे रहा था। जज साहब ने उसकी तरफ सख्ती से देखा और हाँ, सबसे पहले तो आप पर कोर्ट में झूठ बोलने का जुर्माना लगेगा। उम्मीद है कि इसके बाद आप जो भी कहेंगे वो सच ही कहेंगे। मोक्ष ने फिर मानक सहगल से दोबारा पूछा, हाँ तो बताइए सर, आपको वो वीडियो शूट करने के लिए किसने कहा था? या आपको खुद ही आइडिया आया कि रिशानी शर्मा वैनिटी के अंदर गई है तो वहां जरूर उनके लिए कोई लड़का मौजूद होगा? मानक सहगल अब पकड़े जाने की कगार पर था। उसने जल्द ही अपनी बात को बदलने के लिए कहा, मुझे रिशानी नहीं पैसे दिए थे, उसने मुझे कहा था कि मैं वैनिटी में जा रही हूँ, उसका शूट करना है और फिर न्यूज दिखानी है। वो मर चुकी है इसलिए मैंने सोचा कि मरने के बाद बेचारे की और क्या बदनामी हो, इसलिए मैंने झूठ बोला। मेरा यकीन मानिए, मेरा और कोई इरादा नहीं था। अच्छा तो बताइए कि रिशानी ने आपसे क्या कहा था और इस काम के लिए कितने पैसे दिए थे? उन्होंने पैसे आपको कैश में दिए थे या फिर डिजिटली ट्रांसफर किए थे? मोक्ष का अगला सवाल निकल कर आया जिसे सुनकर मानिक सहगल के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने इतनी तैयारी नहीं की थी। आलिया ने परेशान चेहरे के साथ कावेरी दत्ता की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा। आलिया की बेचैनी उसे गुनहगार साबित कर सकती थी। मानिक सहगल ने फिर आगे जवाब में कहा, मुझे उन्होंने कैश में पैसे दिए थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि पार्टी के बाद वो कहीं जा रही हैं। रिशानी मैम ने मुझे नहीं बताया था कि आलिया मैम की वैनिटी को कवर करना है, उन्होंने बस ये कहा कि मैं जहां भी जाऊं मुझे शूट करते रहना, बस इसीलिए मैं वैनिटी में गया। उन्होंने मुझे जितना कहा था मैंने उतना ही कर किया, वरना चाहता तो मैं पूरा वीडियो बना सकता था। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि ये मैं एडल्ट वेबसाइट पर डाल दूं और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करूं। फिल्म एक्ट्रेसेस के लिए ये नॉर्मल होता है, जितना घोटाला होगा उनका नाम उतना ही हाइप में रहेगा। बस यही सोचकर रिशानी ने ये मुझसे करवाया था। मेरा यकीन मानिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है।
मोक्ष ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाकर कहा, चलो मान लेते हैं इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है और तुमने वही किया जो रिशानी शर्मा ने तुम्हें करने के लिए कहा, तो क्या तुम्हारी तरह उन्होंने उस लड़के को भी हायर किया था जो उस रात वैनिटी वैन में था? वो उनका बॉयफ्रेंड था, मानिक सहगल ने झूठ बोलते हुए कहा। रुद्राक्ष, ईशानी और आलिया, यहां तक कि मोक्ष भी अच्छे से जानता था कि उस रात वैनिटी में रुद्राक्ष था। जैसे ही मानिक सहगल ने कहा, रुद्राक्ष गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। कहीं ना कहीं अब ईशानी को यकीन हो चला था कि अगर मोक्ष इसी तरीके से केस को सही से रिप्रेजेंट करता रहा तो वो रिशानी को इंसाफ दिला ही देगी। मोक्ष ने ईशानी की तरफ देखा, उसने इशारे से अब मानिक सहगल को भेजने के लिए कहा। उसकी बात मानते हुए मोक्ष ने जज साहब की तरफ देखकर कहा, मेरे सवाल बस यहीं पर ख़त्म होते हैं, इनकी गवाही इसी निष्कर्ष पर निकलती है कि इन्होंने रिशानी के कहने पर उनकी और उनके बॉयफ्रेंड का पर्सनल वीडियो शूट किया था और फिर उसे वायरल कर दिया, जिसके लिए इन्हें अच्छे खासे पैसे मिले थे। अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए मोक्ष ने फिर से मानिक की तरफ देखकर पूछा, मैं सही कह रहा हूँ ना मिस्टर सहगल, कुछ ऐसा ही हुआ था ना? मानिक सहगल ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। फिर जज साहब ने कहा, आप अपनी गवाही बदल नहीं सकते हैं, अपोजिशन को कोई सवाल पूछना है तो वो आगे आ सकते हैं। कावेरी ने कोई भी सवाल पूछने से मना कर दिया था क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही मानिक सहगल ने अपनी गलती मान ली थी, तो कुछ कहने या पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मानिक सहगल को वहां से भेज दिया गया। उसकी सजा सुनाते हुए जज साहब ने कहा, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए मिस्टर सहगल को जुर्माना और 6 महीने की सजा दी जाती है। इसके बाद ये कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे और इसे उनकी पत्रकारिता का लाइसेंस छीना जाता है। मानिक सहगल के जाने के बाद मोक्ष ने आगे खड़े होकर कहा, हाँ तो जैसे कि हमारे सहगल साहब ने बताया कि उस रात रिशानी ने उन्हें पैसे दिए थे, उन्हें और उनके बॉयफ्रेंड को शूट करने के लिए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। उस रात वैनिटी में रिशानी शर्मा का कोई बॉयफ्रेंड मौजूद नहीं था। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आलिया खुराना के ही भाई रुद्राक्ष खुराना को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगा। जैसे ही मोक्ष ने रुद्राक्ष को बुलाने को कहा, आलिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि रुद्राक्ष झूठ नहीं बोलेगा। माया भी रुद्राक्ष के बारे में जानती थी, इस वजह से उसे मोक्ष और ईशानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आलिया के बाद अब खुराना फैमिली के बेटे का नाम घसीटा है। रुद्राक्ष उठकर आगे जाने को हुआ, इस बीच उसकी नज़र ईशानी की तरफ गई जिसे वो गुस्से से देख रहा था। रुद्राक्ष ने ये बात सिर्फ ईशानी को बताई थी और उसे नहीं पता था कि ईशानी उसकी इस बात का इस तरह कोर्ट में सरेआम यूज करेगी। रुद्राक्ष के विटनेस बॉक्स में आते ही उसे भी कसम दिलाई गई और फिर मोक्ष ने उसे सीधे सीधे पूछा, अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर रुद्राक्ष खुराना, आप आलिया खुराना के बड़े भाई हैं और उस रात अवार्ड पार्टी में आप आलिया को सपोर्ट करने के लिए वहां गए थे। रुद्राक्ष ने उसकी बात पर हामी भरी। मोक्ष ने आगे पूछा, आप रिशानी शर्मा की छोटी बहन ईशानी शर्मा के हस्बैंड हैं, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बहनों के साथ रिलेशनशिप में हैं, आई मीन एक तो मर चुकी है ना, आप ही थे ना उस रात वैनिटी में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अवार्ड पार्टी से निकलकर आपको ही रिशानी से पहले वैनिटी में जाते हुए देखा गया था। उसके सवाल पर रुद्राक्ष चुप हो गया था। अगर वो मोक्ष की बातों को कन्फर्म करता तो यहाँ आलिया पर परेशानी आ सकती थी, और नहीं करता तो ईशानी इस तरह झूठ बोलने पर उसे कभी माफ नहीं करती। रुद्राक्ष वहां कश्मकश की स्थिति में खड़ा हुआ था, तभी उसकी नजर आलिया पर गई, जो नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए उससे झूठ बोलने के लिए कह रही थी। क्या मोक्ष इस बार रिशानी को इंसाफ दिला पाएगा? क्या कोर्ट की हेयरिंग के बाद ईशानी और रुद्राक्ष का रिश्ता खत्म हो जाएगा? देखते हैं इस बार आलिया के साथ क्या होगा और रुद्राक्ष किसका साथ देता है। क्या रुद्राक्ष कोर्ट में सच बोलेगा या फिर आलिया को बचाने के लिए वो झूठ का साथ देगा? जानने के लिए पढ़ते रहें और पढ़कर समीक्षा भी कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।